नमस्कार श्रोताओं, कार्यक्रम सत्य वचन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। इन दिनों हम पवित्र शास्त्र बाइबल के पुराने नियम में से उत्पत्ति नामक पुस्तक का विस्तार से अध्ययन कर रहे हैं। आशा करते हैं कि इस अध्ययन से आपको आत्मिक लाभ मिल रहा है। तो आइए आज के इस अध्ययन में हम सम्मिलित हों, लेकिन इससे पहले मन की तैयारी के लिए सुनते हैं ये मधुर संगीत रचना।
हे प्रभु यीशु, जय जय
प्रिय मित्र, प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मधुर नाम में आपको नमस्कार। मुझे विश्वास है कि आप सब प्रभु की कृपा से अच्छे ही होंगे और उसके वचन को सीखने के लिए तैयार होंगे। मित्रों, उत्पत्ति के 39 अध्याय में हमने यूसुफ का परीक्षा में पढ़ना और बंदी गृह में डाले जाने के विषय में देखा था। अब हम उत्पत्ति 40 अध्याय में यूसुफ की कहानी को आगे बढ़ते हुए न देखकर एक प्रकार से बिल्कुल स्थिर होते हुए देखते हैं। हम यूसुफ को बंदीगृह में देखते हैं और वह राजा के रसोईया की अकृतज्ञता के द्वारा विलंबित और सीमित किया गया। हम यह पूछ सकते हैं कि इन सब का मतलब क्या है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि यह सब कुछ परमेश्वर की योजना और उद्देश्य को यूसुफ के जीवन के लिए पूरा कर रहा था। जब हम इस अध्याय में आगे बढ़ेंगे तो इन सब बातों को हम देखेंगे। मित्रों, आपको याद होगा कि हमने उत्पत्ति 37 अध्याय में यूसुफ और यीशु मसीह के बीच तुलना करना आरंभ किया था। अब हम इस कहानी के साथ आगे बढ़ते हैं, तो आइए अब हम इस तुलना को यहीं पर रोक देते हैं। पहला, यूसुफ अपने भाइयों के पास भेजा गया, यीशु मसीह भी अपने लोगों के पास भेजा गया, इसराइल के घरों में उन खोई हुई भेड़ों के पास। दूसरा, यूसुफ बिना कारण के ही अपने भाइयों के द्वारा तिरस्कृत किया गया, और यीशु मसीह भी अपने बारे में इस प्रकार कहते हैं, बिना कारण उन्होंने मुझसे घृणा की। तीसरा, यूसुफ अपने भाइयों के द्वारा बेचा गया और यीशु मसीह अपने ही एक शिष्य के द्वारा बेचा गया। चौथा, यूसुफ चांदी के 20 सिक्कों में बेचा गया और यीशु मसीह 30 चांदी के सिक्कों में बेचा गया। पांचवा, यूसुफ को मारने के लिए उसके भाइयों ने ही षड्यंत्र रचा और यीशु के शिष्य ने उसे मारने का षड्यंत्र रचा। वह अपनों के बीच आया और अपनों ने उसे स्वीकार नहीं किया। छठवां, यूसुफ को गड्ढे में डाला गया जो उसके लिए मृत्यु का स्थान था। यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया गया। सातवां, यूसुफ को गड्ढे से बाहर निकाला गया और यीशु मसीह मृतकों में से तीसरे दिन जीवित हो उठा। आठवां, यूसुफ ने अपने पिता की आज्ञा का पालन किया। यीशु मसीह ने भी अपने पिता की आज्ञा का पालन किया, इसलिए वह कह सकता था कि उसने हमेशा वही कार्य किया जिससे उसका पिता प्रसन्न होता था। नवा, यूसुफ के पिता ने उसे अपने भाइयों को खोजने के लिए भेजा। हमें बताया गया है कि प्रभु यीशु मसीह अपने पिता की इच्छा पूरी करने के लिए आए थे जब वह अपने भाइयों को यहाँ पर ढूंढने आए थे। दसवां, यूसुफ अपने भाइयों के द्वारा ठड्डों में उड़ाया गया। जब उन्होंने उसे आते हुए देखा तो उन्होंने कहा, देखो वह स्वप्नदर्शी आ रहा है। यीशु मसीह भी अपने ही लोगों के द्वारा ठड्डों में उड़ाया गया। जब वह क्रूस पर था उन्होंने कहा, यदि वह मसीह है तो अपने आप को अभी क्रूस पर से नीचे उतार ले। ग्यारहवां, भाइयों ने यूसुफ को स्वीकार करने से इनकार कर दिया और यीशु मसीह के यहूदी भाइयों ने भी उसे स्वीकार करने से मना कर दिया। बारहवां, उन्होंने यूसुफ को मारने की सलाह की और हमें बताया गया कि यीशु मसीह को मार डालने की षड्यंत्र रची गई। तेरहवां, यूसुफ के अंगरखा को लहू में डुबाकर उसके पिता को वापस दिया गया। उन्होंने यीशु मसीह के वस्त्र को लिया और उस पर चिट्ठी डाली। चौदह, मिस्र में यूसुफ के बेचे जाने के बाद वह कई वर्षों तक आंखों से ओझल था। यीशु मसीह स्वर्ग में उठा लिया गया। उसने अपने शिष्यों से कहा कि उसके दोबारा आगमन तक वे उसे फिर कभी नहीं देखेंगे। पंद्रहवां, संसारिक, दैहिक और शैतान द्वारा यूसुफ की परीक्षा ली गई, पर उसने उसका सामना किया। यीशु मसीह की भी सांसारिक, दैहिक और शैतान द्वारा परीक्षा हुई, पर वह उस पर विजयी हुआ। सोलहवां, शारीरिक रीति से यूसुफ इस संसार का उद्धार करता या छुटकारा देने वाला बना। जब वे अकाल से पीड़ित थे उन्हें भूखमरी से बचाया। प्रभु यीशु मसीह सब तरीके से संसार का उद्धार करता है। सत्रहवां, यूसुफ अपने भाइयों के द्वारा नफरत किया गया और उसे अन्य जातियों के हाथ में सौंप दिया गया। वह अपना बचाव नहीं कर सका और अन्याय के साथ उसे दोषी ठहराया गया। यीशु मसीह भी अपनों के द्वारा ही धार्मिक अगुओं के हाथ में सौंपा गया जिन्होंने उसे अन्य जातियों के हाथों में सौंप दिया। वह निर्दोष था। 18, यीशु मसीह के विरोध में लगाए गए दोष पर पिलातुस ने विश्वास नहीं किया। वह उसमें कोई दोष नहीं पा सका, फिर भी उसे कोड़े लगवाए और यीशु को भी कष्ट उठाना पड़ा। संभवतः पोतीफर इस बात को जानता था कि यूसुफ निर्दोष है। पोतीफर को यीशु के बारे में फिरौन के सामने बताना पड़ा, जिस प्रकार पिलातुस ने यीशु को कैसर के सामने रखा। 19 जेलर की कृपा दृष्टि यीशु पर हुई और यीशु मसीह के सिलसिले में रोमी सिपाही ने उसके बारे में इस प्रकार कहा, निश्चय ही यह परमेश्वर का पुत्र था। 20 यूसुफ अपराधियों के साथ गिना गया, वह प्रधान साकी के लिए आशीष और रसोई के लिए न्याय बना और यीशु मसीह दो अड्डाकों के बीच क्रूस पर चढ़ाया गया। एक का न्याय किया गया और दूसरे को आशीषित किया गया। इस अध्याय में हम देखेंगे कि क्यों यह परमेश्वर की इच्छा थी कि यूसुफ इस समय बंदी गृह में रहे। हम आगे देखते हैं कि यीशु बंदी गृह में रसोइये और साकी के स्वप्नों का अर्थ बताता है। तो आइए हम उत्पत्ति 40 अध्याय उसके 1-3 पद को पढ़ें, जहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, इन बातों के पश्चात ऐसा हुआ कि मिस्र के राजा के साकी और रसोइये ने अपने स्वामी मिस्र के राजा का कुछ अपराध किया, अतः फिरौन अपने उन दोनों अधिकारियों अर्थात प्रधान साकी और प्रधान रसोइये पर अति क्रोधित हुआ। उसने उन्हें बंदी बनाकर अंगरक्षकों के प्रधान के घर के उसी बंदीगृह में जहां यीशु बंदी था डाल दिया। मित्रों, यह कोई दुर्घटना नहीं थी, तो वास्तव में इसका वास्तविक मतलब क्या है, अर्थात यह क्या प्रकट करता है? यह निश्चित तौर से मिस्र के राजा के निरंकुशता और अधिनायकीय पद और कूटनीति को हमें प्रकट करता है जो उसके पास था। मैं यह नहीं जानता कि रसोई ने क्या किया था। हो सकता है कि उसने उसका नाश्ता जला दिया हो या कुछ मौज के लिए उसे राजा ने बंदीगृह में डलवा दिया। लेकिन खानसामा ने क्या किया था? हो सकता है कि वह राजा के लिए गिलास में दाखरस ला रहा होगा और ठोकर खाकर उसके हाथ से शराब या दाखरस गिर गया होगा और ठोकर खाकर या लगकर उसके हाथ से शराब उस फारसी कालीन पर गिर गया जो वहां पर बिछी हुई थी। मैं नहीं जानता हूं, क्योंकि यह हमें नहीं बताया गया है क्यों राजा के खानसामा और रसोइया बंदी गृह में डाले गए थे। परंतु महत्वपूर्ण बात तो यह थी कि जहां यूसुफ था उसी बंदी गृह में इन्हें भी डाला गया था और यूसुफ यहां इस बंदी गृह में भी एक अच्छे पद पर था। जहां कहीं भी वह गया उसकी योग्यता को पहचाना गया। नीति वचन 18 अध्याय उसके 16 पद में लिखा है, भेंट की वस्तु मनुष्य के लिए अवसर प्रदान करती है और उसे महापुरुषों के सामने पहुंचाती है। और निश्चित तौर पर यह वचन यूसुफ के लिए बिल्कुल सच था और परमेश्वर यूसुफ के जीवन में एक निश्चित या विशेष उद्देश्य के साथ आगे बढ़ रहे थे। हम उत्पत्ति 40 अध्याय उसके 4 पद में इस प्रकार से पढ़ते हैं, तब अंगरक्षकों के प्रधान ने यूसुफ को उनके ऊपर अधिकारी ठहराया और उसने उनकी देखभाल की। वे कुछ दिनों तक बंदीगृह में रहे। हम देखते हैं कि यूसुफ का उनके साथ अच्छा परिचय हो गया, क्योंकि वह उनके ऊपर अधिकारी था। यह उसकी जिम्मेदारी थी कि वह उनकी देखभाल करे जब तक कि वे बंदीगृह में थे। तब हम आगे पढ़ते हैं उत्पत्ति 40 अध्याय उसके 5-6 पद में लिखा है, तब मिस्र के राजा का साकी और रसोइया जो बंदीगृह में बंदी थे, उन दोनों ने एक ही रात में अपने भविष्य में होने वाली घटना के अनुसार एक एक स्वप्न देखा। प्रातःकाल जब यूसुफ उनके पास आया तो उन्हें ध्यान से देखा कि वे उदास हैं। मित्रों, यूसुफ व्यक्तिगत रीति से आशावादी किस्म का व्यक्ति था जो हमेशा प्रसन्नचित और तेज था, और वह इन दोनों को जो राजा के दरबार में अधिकारी थे बहुत ही दुखी और निराश चेहरे के साथ बैठे हुए देखता है जो उनके चेहरे से झलक रहा था। आगे हम उत्पत्ति 40 अध्याय के 7-8 पद में पढ़ते हैं, जहां पर लिखा है, तब उसने फिरौन के उन अधिकारियों से जो उसके साथ उसके स्वामी के भवन के बंदीगृह में थे पूछा, आज तुम्हारे चेहरे उदास क्यों हैं? तब उन्होंने उससे कहा, हम दोनों ने स्वप्न देखा है और उनका अर्थ बताने वाला कोई नहीं है। तब यूसुफ ने उनसे कहा, क्या सपनों का फल बताना परमेश्वर का काम नहीं है? मुझे अपने अपने स्वप्न बताओ। मित्रों, यहां पर हम देखते हैं कि यूसुफ सारी महिमा परमेश्वर को देता है। बाद में हम और एक यहूदी जवान के बारे में देखेंगे जो बिल्कुल इसी तरह परमेश्वर को महिमा देता है। दानियल ने भी परमेश्वर की महिमा इसी रीति से की। मैं यही कामना करता हूं कि आज मसीही विश्वासी भी इसी प्रकार परमेश्वर को महिमा दें। मैं और आप जो कुछ भी परमेश्वर के लिए करते हैं उससे परमेश्वर की स्तुति और महिमा हो। इस बात का निश्चय कर लें कि इससे परमेश्वर को महिमा मिलनी चाहिए। मित्रों, मैं विश्वास करता हूं कि आज हम में से बहुत लोगों को आशीष नहीं मिलती है जितनी की परमेश्वर हमें देना चाहता है। उसका एक कारण यह है कि जब हम कुछ अद्भुत चीजों को प्राप्त करते हैं तो हम उसे बहुत हल्के में ले लेते हैं और हम इसके लिए परमेश्वर को महिमा नहीं देते हैं। मुझे और आपको परमेश्वर को महिमा देना चाहिए। यूसुफ को भी परमेश्वर को महिमा देनी चाहिए थी और वह देता है। वह कहता है, क्या स्वप्नों का फल बताना परमेश्वर का काम नहीं है? तब हम आगे पढ़ते हैं उत्पत्ति 40 अध्याय उसके 9 से 13 पद में लिखा है, तब प्रधान साकी ने अपना स्वप्न यूसुफ को इस प्रकार बतलाया, मैंने स्वप्न में देखा कि मेरे सामने एक अंगूर की लता है और उस लता में 3 डालियां हैं और उसमें मानो कलियां लगी हैं और वे फूली और उसके गुच्छों में अंगूर लगकर पक गए हैं। अब फिरौन का कटोरा मेरे हाथ में था, इसलिए मैंने अंगूरों को लेकर फिरौन के कटोरे में निचोड़ा और कटोरे को फिरौन के हाथ में दिया। तब यूसुफ ने उससे कहा, इसका फल यह है कि 3 डालियों का अर्थ है 3 दिन। 3 दिनों के भीतर फिरौन तेरा सिर ऊंचा करेगा और तेरा पद फिर से तुझे दे देगा और तू पहले के समान फिरौन का साकी बनकर उसका कटोरा उसके हाथ में दिया करेगा। मित्रों, यह एक रुचिदायक बात है कि परमेश्वर ने पुराने नियम में स्वप्नों का उपयोग किया। हम उसी प्रकार से नए नियम में परमेश्वर को बढ़ते हुए नहीं देखते हैं क्योंकि इस समय तक सुसमाचार पूर्ण रूप से तैयार हो चुका था। हमें आज स्वप्नों की आवश्यकता नहीं है, परंतु उस समय थी। परमेश्वर ने स्वप्नों के माध्यम से बातचीत की और उसने संकेताक्षर का प्रयोग किया जो उनके लिए अर्थपूर्ण थे। एक साकी ही अंगूर के रस को देने के बारे में अच्छी तरह समझ सकता है क्योंकि यही कार्य वह राजा के लिए किया करता था। मित्रों, बाद में हम देखेंगे कि राजा नबूकदनेज़र ने भी एक मूर्ति का स्वप्न देखा। इससे यह निश्चित होता है कि वह उस मूर्ति के साथ या प्रतिमा के साथ अच्छी तरह परिचित है और इसके माध्यम से वह इसे अच्छी तरह समझ सकता है। मित्रों, यूसुफ ने साकी के स्वप्नों का अर्थ उसे बताया और वायदा दिया कि वह 3 दिन के भीतर फिर से अपने काम में लग जाएगा। आइए हम उत्पत्ति 40 अध्याय के 14 पद को पढ़ें, जहां पर इस प्रकार से लिखा है, जब तेरा भला हो जाए तो मुझे स्मरण करना और मुझ पर कृपा करके फिरौन से मेरी चर्चा करना और इस बंदीगृह से मुझे छुड़वा देना। वह साकी से कहता है कि अब 3 दिन के भीतर तू यहां से चला जाएगा, परंतु मैं तो यहीं पर सड़ता रहूंगा जब तक कि कोई मेरी ओर से पहल ना करे। मैंने तुम्हारे स्वप्नों का अर्थ बतलाया है, इसलिए कृपया मुझे भूल मत जाना। और अब आगे वह अपनी कुछ जानकारी उसे देता है जिसे हम उत्पत्ति 40 अध्याय के 15 पद में पढ़ते हैं, क्योंकि सचमुच मुझे इब्रानियों के देश से अपहरण करके लाया गया है और यहां भी मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया जिसके कारण मैं इस बंदी गृह में डाला जाऊं। मित्रों, हमें लेख में यह नहीं बताया गया है कि प्रधान साकी ने यूसुफ से प्रतिज्ञा की कि वह राजा से उसके बारे में कहेगा, परंतु हम उसके आगे उत्पत्ति 40 अध्याय के 16 और 17 पद में पढ़ते हैं, जहां पर इस प्रकार से लिखा है, प्रधान रसोइये ने जब देखा कि उसने स्वप्न का फल अनुकूल बताया है तो उसने यूसुफ से कहा, मैंने भी स्वप्न देखा है कि मेरे सिर पर सफेद रोटियों की 3 टोकरियां रखी गई हैं। ऊपर की टोकरी में फिरौन के लिए सब प्रकार का पका हुआ भोजन है और पक्षी मेरे सिर पर की टोकरी में से उन वस्तुओं को खा रहे हैं। यहां पर हम देखते हैं कि रसोइये का स्वप्न एक संकेत या चिन्ह के रूप में था जो उसके लिए अर्थपूर्ण था क्योंकि वह अच्छी तरह समझ सकता था कि टोकरी रोटियों से और कुछ मिठाइयों से भरी थी। आगे हम उत्पत्ति की पुस्तक 40 अध्याय उसके 18 और 19 पद में इस प्रकार से पढ़ते हैं, तब यूसुफ ने कहा, इसका फल यह है 3 टोकरियां 3 दिन है। 3 दिनों के भीतर फिरौन तेरा सिर कटवा कर तुझे एक वृक्ष पर टंगवा देगा और पक्षी तेरे मांस को नोच नोच कर खाएंगे। यहां पर यूसुफ उसके स्वप्न का अर्थ उसे बताता है लेकिन उसे चेतावनी भी देता है कि उसके लिए कुछ अच्छा नहीं होने जा रहा है। 3 दिन के भीतर उसे बंदीगृह से बाहर निकाला जाएगा और उसे टांग दिया जाएगा और पक्षी उसके मांस को नोच नोच कर खाएंगे। तब हम आगे देखते हैं कि उनका स्वप्न पूरा होता है। उत्पत्ति 40 अध्याय उसके 20 से 23 पद में हम पढ़ते हैं, तीसरे दिन जब फिरौन का जन्मदिन था उसने सब कर्मचारियों के लिए एक भोज किया और अपने कर्मचारियों में से प्रधान साकी और प्रधान रसोइये दोनों को बंदीगृह से निकलवाया और प्रधान साकी को फिर से साकी के पद पर नियुक्त किया और वह फिरौन के हाथ में प्याला देने लगा, परंतु उसने प्रधान रसोइये को टंगवा दिया जैसा कि यूसुफ ने उनके स्वप्नों का फल उनको बताया था। फिर भी प्रधान साकी ने यूसुफ को स्मरण न रखा, परंतु वह उसे भूल गया। बेचारा यूसुफ, अब यहां ऐसे लगता है जैसे आशा रहित दुर्दशा में हो। यहां पर वह एक दास ही नहीं, परंतु यहां पर वह है जिस पर झूठा आरोप लगाया गया है। मेरा विश्वास कीजिए कि बंदीगृह के सलाखे वास्तविक थे, मानो वह किसी भयंकर अपराध के लिए दोषी ठहराया गया हो। बेचारा लड़का यहां पर है और पोतीपर का उद्देश्य भी यही था कि वह उसे भूल जाए। घर के कलंक को छिपाने का यह उसका अच्छा तरीका था, लेकिन पोतीपर के घर के कलंक को छिपाने के लिए यूसुफ को कीमत चुकानी पड़ी। यूसुफ के लिए एक ज्योति की झलक यह थी कि प्रधान साकी राजा के सम्मुख उसे याद करे। ऐसा लगता था कि यही राजा के ध्यान को अपनी ओर लगाने का अद्भुत रास्ता था। लेकिन प्रधान साकी राजा की दृष्टि में दोबारा आने और अपने काम को पुनः पाने से बहुत ज्यादा उल्लासित था कि वह बेचारे यूसुफ के बारे में सब कुछ भूल गया। उसे वहां पर छोड़ने के प्रति परमेश्वर का एक उद्देश्य था। मान लीजिए कि प्रधान साकी ने राजा से कहा होता कि बंदीगृह में एक कैदी है जो बेगुनाह है, उसे वहां नहीं रहना चाहिए, उस पर झूठा दोष लगाया गया है और उसी ने मेरे स्वप्न का सही अर्थ बताया है। राजा साहब, मैं आपका बहुत कृतज्ञ रहूंगा यदि आप उस कैदी को छोड़ दे। मान लीजिए कि राजा ने उसे अर्थात यूसुफ को छोड़ दिया होता, तो क्या आप नहीं देखते हैं कि उसका क्या हुआ होता? वह अपने देश व घर कनान में होता। जब राजा को अपने स्वप्न का अर्थ बताने वाला चाहिए होता, तब अर्थात राजा की आवश्यकता के समय वह वहां पर नहीं होता। परमेश्वर उसे राजा के नजदीक में ही रखना चाहता था और बंदीगृह ही एक सुविधाजनक स्थान था जहां उसे रखा जा सकता था, और राजा को जब उसकी आवश्यकता पड़ती तो उसे ढूंढने में कोई भी परेशानी नहीं होती। मित्रों, सारी निराशाओं के बावजूद भी यूसुफ ने विश्वास किया कि परमेश्वर उसके जीवन को चला रहे हैं, और उसके विश्वास का फल जो स्पष्ट या प्रकट था, वह अपने जीवन के हर एक संबंध में विश्वास योग्य था। वह पोतीफर के प्रति विश्वास योग्य था, बंदीगृह में वह बंदीगृह के अधिकारी के प्रति विश्वास योग्य था, वह हमेशा परमेश्वर को महिमा देने के द्वारा परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य था। हम बाद में आगे देखेंगे कि वह राजा के प्रति भी विश्वास योग्य था और वह अपने भाइयों के प्रति भी विश्वास योग्य रहेगा। आप देखेंगे कि यूसुफ का विश्वास ही उसे विश्वास योग्य बनाता है। मेरे मित्रों, मैं विश्वास करता हूं कि यदि आप सच्चे मसीही हैं तो आप अवश्य ही विश्वास योग्य बने रहेंगे। मित्रों, आज हम ऐसे दिनों में जी रहे हैं जहां पर एक दुखद बात घट रही है, और वह है कि बहुत थोड़े मसीही लोग हैं जो अपने ऊपर भरोसा रख सकते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि मेरा एक मित्र है जो एक बड़ी संस्था का अधिकारी है। एक बार हम दोनों को अकेले में बैठने का मौका मिला जहां पर सिर्फ हम दोनों ही थे। तब वह मुझसे अपनी कुछ समस्याओं को बताने लगा जो उसके साथ थी। वह एक प्रचलित संस्था में था, फिर भी वह मुझसे कह रहा था कि वह अपने संस्था में बहुत ही थोड़े लोगों पर भरोसा करता है। मित्रों, इस बात का ध्यान रखिए कि यह एक मसीही संस्था थी। मित्रों, यह सच है कि हम बहुत थोड़े लोगों को उनके पदों के प्रति विश्वास योग्य पाते हैं, और हम उन लोगों के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। मैंने हमेशा परमेश्वर का धन्यवाद किया है कि उसने मेरे चारों ओर, जहां मैं कभी गया भी नहीं, वहां भी कुछ विश्वास योग्य लोगों को रखा है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि वे बहुत ही प्रिय लोग हैं जो बड़े उत्साह के कारण हैं। यीशु भी उसी प्रकार का व्यक्ति था। उसके विश्वास ने उसे विश्वास योग्य बना दिया था, और उसकी कठिनाई और परीक्षा में उसने उसके जीवन को आशावादी बना दिया था। यह उसका विश्वास ही था जिसने उसे एक दूसरों के प्रति दयापूर्ण और सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार से भर दिया था। आप ध्यान दीजिए कि वह प्रधान साकी और रसोइये के प्रति कितना दयापूर्ण था, और बाद में हम देखेंगे कि वह अपने भाइयों के प्रति कैसे दयापूर्ण रहा। और एक दूसरी बात जो विश्वास ने उसके जीवन में की कि उसने उसे बहुत ही नम्र व्यक्ति बना दिया। उसने अपनी सारी सफलताओं में परमेश्वर को महिमा दी। वह क्या ही अद्भुत व्यक्ति था, और क्या ही विश्वसनीय था। उसने परमेश्वर पर विश्वास किया जैसे उसके पिता इब्राहिम ने परमेश्वर पर विश्वास किया था, और यह उसके विश्वास का ही फल था जो उसके जीवन में उत्पन्न हुआ। यहाँ पर यूसुफ है जिसे बंदीगृह में भुला दिया गया है, परंतु कोई है जो इसे नहीं भुलाया है। परमेश्वर उसे नहीं भुला और वह उसके जीवन में अभी भी कार्यशील है। मित्रों, आपके और मेरे लिए एक संदेश है। मैं नहीं जानता कि आपकी परिस्थिति इस समय क्या है, परंतु आपके पत्रों को पढ़कर इतना जरूर जानता हूं कि बहुत लोग कठिन स्थिति में हैं। एक व्यक्ति ने मुझे लिखा कि मैं एक चट्टान और कठोर स्थान के बीच में हूं, जहां से सब चीजें बहुत अंधेरी लगती हैं। आपको वहां से बाहर निकलने का कोई मार्ग नहीं दिखाई देता है, और आप आश्चर्य करते हैं कि यदि परमेश्वर ध्यान देते या कुछ करते। यही कारण है कि परमेश्वर ने हमें यूसुफ की कहानी दी है। वह चाहते हैं कि आप इस बात को जानें कि वह आपका ध्यान करते हैं और वह आपके जीवन में कार्य कर रहे हैं। यदि आप परमेश्वर की संतान है तो वह उन चीजों को आपके जीवन में होने के लिए अनुमति दे रहे हैं जो आपकी भलाई के लिए है। मित्रों, हम इसे खो नहीं सकते हैं क्योंकि हमारा परमेश्वर बहुत ही अद्भुत है। यहाँ पर यह अध्याय समाप्त होता है और आज के अध्ययन का समय भी समाप्त होता है। इसलिए हम अगले कार्यक्रम में फिर मिलेंगे और प्रभु आप सबको अपने वचन के द्वारा आशीष दे।
प्रिय श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन। हम आशा करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम से आपको आत्मिक लाभ मिला होगा। यदि आप परमेश्वर के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं तो हमारे पास नया नियम एवं पवित्र शास्त्र बाइबल उपलब्ध है। तो यदि आप इन्हें प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें इस पते पर लिखें, कार्यक्रम सत्यवचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, नई दिल्ली 110019। पता एक बार फिर सुन लीजिए, कार्यक्रम सत्यवचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, न्यू दिल्ली 110019। और हाँ श्रोताओ, याद रखें कि पत्र लिखते समय आपका नाम और पता साफ साफ लिखा होना चाहिए। इसके अलावा आप हमसे टेलीफोन के माध्यम से भी बातचीत कर सकते हैं, जिसमें हमारे काउंसलर या सलाहकार आपको सलाह देंगे। तो नोट कीजिए, हमारा मोबाइल नंबर 9958820414। याद रखें 9958820414। इसके अलावा आप हमसे ईमेल के द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindittb@twr.in, hindittb@twr.in। और अब इसी के साथ हमारे कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।